प्रिय भाई और बहनों, नमो बुधाय, जय भीम। So we've come to the last week of the Buddha's time in Bodh Gaya.
तो बुद्ध का जो आखिरी सप्ताह था, जो उन्होंने बोध गया में बिताया, उस मुकाम पर हम सब लोग अभी आए हैं।
So let's just remember where we've come from.
तो आइए फिर से हम याद करते हैं कि अभी तक क्या हुआ।
Because it begins to be possible to see a sort of process going on.
तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक परिक्रमा चल रही थी सभी घटनाओं की।
So the Buddha comes to the Bodhi tree, having taken a meal, having made himself comfortable.
तो बुद्ध ने खीर ली थी और बोधि वृक्ष के नीचे आए और अपने आप को उन्होंने स्वस्थ किया।
And he makes a very strong determination that he will not move until he's gained enlightenment.
और उन्होंने अपने आप से गहरा संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया कि जब तक मैं संबोधि की प्राप्ति नहीं करूंगा, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं।
And as the week goes on, light dawns in his mind.
और जैसे जैसे ही सप्ताह बीतते गए, उनके मन में ऐसा एक प्रकाश आया।
And he goes beyond Mara.
मार के परे ले चले गए।
In other words, he goes beyond all the disturbance of the mind. Or the disturbance of the world.
निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी मन की और विश्व की अचलता के परे वो चले गए।
And he realizes the true nature of this life.
और उन्होंने इस जीवन का जो सही स्वभाव है, अस्तित्व है, उसको उन्होंने जाना।
In the second week, he goes to that little hill and gazes back at the Bodhi tree.
समुद्र प्राप्ति के पश्चात वह जो बाजू में छोटी सी जो पहाड़ी है वो वहाँ गए।
And he feels intense gratitude to the tree for sheltering him.
और उन्होंने उस पेड़ के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, उनके आवास और निवास के प्रति।
And then he walks up and down just there beside the mandir.
तो वह जो मंदिर के तुरंत बाजू में जो परिक्रमा है, वहाँ पे वो गए और वहाँ चले।
And he's reflecting on his experience.
और उन्होंने अपने अनुभवों के ऊपर गहरा चिंतन किया।
I imagine at this stage he's not reflecting in words.
अब मैं कल्पना करता हूँ कि यह केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं थी।
He's just experiencing fully this new realization.
और उन्होंने अपने जो उन्होंने जो हासिल किया, जो उन्होंने पाया, उसको वो गहराई से समझ रहे थे।
He's letting it sort of soak into him.
अपने अनुभव में वह पूरी तरह आत्मसात या डूब जाना चाहते थे।
Just walking up and down,
केवल वो आगे पीछे वहाँ से पूर्ण जागरूकता के साथ चल रहे थे।
And then in the fourth week he sits over to the side there and it's as if he's in a chamber made of jewels.
और चौथे सप्ताह में वह जो रत्नाघर है, उस रत्नाघर में बैठे।
In other words, he's exploring all the possibilities of meditation.
दूसरे शब्दों में मैं ऐसे रखूंगा कि ध्यान की जो संपूर्ण संभावनाएं जो थी, उसको वह प्रदीप्त कर रहे थे।
It's as if he's had this realization which goes right to the heart of things.
ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी प्राप्ति की वह अभिव्यक्ति थी जो सीधे प्रत्यक्ष दिल से छूती थी।
And then he explores that in every possible context.
और उसको वह अभिव्यक्त कर रहे थे जिस तरीके से संभव हो, उन सभी संभावनाओं के साथ।
He takes that experience into meditation.
उस अनुभव को वह पूरी तरह अपने ध्यान में आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं।
So he's making it firmer, making it stronger, making it deeper.
तो और भी उसको अच्छी तरह स्थापित कर रहे थे और गहरा कर रहे हैं।
He doesn't need to prove it because the experience itself is proof.
क्योंकि उनको इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, उनका अनुभव ही अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ प्रमाण था।
But he's seeing all its implications, all its full meaning.
लेकिन उसके जो परिणाम है और जो गहरे अर्थ है, उसको वह गहराई से समझ रहे थे।
You know, it's a bit like sometimes you study a new subject.
जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई नए विषय को हम पढ़ते हैं.
Well, I'll give you an example from my own experience.
मैं अभी अपने स्वयं के उदाहरण से आपको यह बताऊंगा.
When I came to India first, I had to study India's social system.
जब मैं पहली बार भारत में आया तो मुझे यह भारतीय समाज रचना जो है इसको समझना था.
And I read about that social system.
और मैंने इस सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा.
And to that extent, I understood it.
और उसी हद तक मैं इसको समझ पाया.
But then I see, well, this happens. That's because of this social system.
तो फिर मैंने पाया ये ऐसा होता है क्योंकि समाज व्यवस्था ऐसी है.
He says this to him.
इस व्यक्ति ने इसको ऐसे कहा.
That's because of that social system.
यह इसलिए कहा क्योंकि इस सामाजिक व्यवस्था के कारण.
So you see all the implications of the realization that takes place at another level.
तो दूसरे स्तर पे यह जो सारे परिणाम है उन परिणामों को हम देखते हैं.
So this is just an analogy, of course, that the Buddha's realization was not an intellectual one.
तो यही एक विशिष्ट प्रक्रिया है क्योंकि बुद्ध की जो प्राप्ति थी यह केवल बुद्धिवादी ताके ऊपर ही आधारित नहीं है.
So in this fourth week, he's exploring all the implications of his realization in his meditation.
और चौथे सप्ताह में जो भी संभावनाएं जो थी उनके अनुभव की उसको वह विश्लेषित कर रहे थे, उसको वह अभिव्यक्त कर रहे थे.
And then he walks over to the Ajapala tree at the foot of the steps.
उसके पश्चात वह अजपाल वृक्ष के नीचे गए जहां से सीढ़ियां खत्म होती है.
And he sits down again for meditation.
फिर से उस वृक्ष के नीचे वह ध्यान करते हुए बैठे.
And that's when he's confronted with the old social and religious order.
और वहीं पे उन्होंने जो पुरानी समाज व्यवस्था थी उसके साथ तकरार की या उसके साथ उनका पाला पड़ा.
He meets Huhunka.
वहां पे वह Huhunka को मिले.
And for the first time he's in contact with human beings.
और वह उनका पहला संबंध था किसी मानव के साथ.
And he expresses uncompromisingly his new vision.
और बिना किसी समझौते के बगैर उन्होंने अपने नए दृष्टि को स्पष्टता से अभिव्यक्त किया.
Very gently, very calmly, very joyously.
बहुत सहजता से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और आनंद के साथ.
He rejects that old order and asserts the new order.
उन्होंने वह पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको पूरी तरह नकारा और नए रचना की बात की.
And then he gets up and he walks to the Mukhalinda tree, Muchalinda tree.
और वहां से वह उठे और जो मुचलिंद वृक्ष था उसके पास गए.
There's that tremendous storm.
वहां पे एक भयानक तूफान आया.
Whether it was a real storm or a storm of the mind, we don't know.
अब यह सही में तूफान था या मन का तूफान था इसके बारे में हमें पता नहीं.
If it's a storm of the mind, it doesn't represent something unpleasant. It represents the descent of bliss, of happiness.
अगर यह मन का भी अगर तूफान होगा तो यह मन के संभावनाओं की आभा को ही बता रहा था.
And he's completely encoiled by the serpent.
और वह जो सर्प जो था उस सर्प से वह पूरी तरह वहां घिरे हुए थे.
And that represents the full integration of all his energies, conscious, unconscious, superconscious, collective unconscious, etc.
तो यह उनके सभी ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति थी एकत्रित रूप से जो सचेतन है, अचेतन है, अति अचेतन है और भी जो कुछ भी उनकी ऊर्जाएं हैं.
Good, well done. And he sits there enjoying the bliss of this state.
और वहां पे उस अवस्था में बैठकर अपने संबोधि की आभा का वो अनुभव कर रहे थे.
And he gives, he utters an inspired saying.
और उसके बाद उन्होंने
an inspired saying.
उन्होंने फिर बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी कुछ बातें कही.
It's an udana.
उसे हम कहते हैं उदान.
Udana means the upward and outward going breath.
उदान का अर्थ होता है कि बाहर जाती हुई सांस.
So it is as if he breathes out this inspired saying.
इसका अर्थ ऐसे हुआ कि बहुत ही प्रेरणादायी सांस जैसे वो बाहर निकाल रहे हैं.
And he just sings of the happiness, the joy of the spiritual life.
तो अपने आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च जो आनंद है या उनकी जो प्रीति कह सकते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति है उसको वह जाहिर कर रहे हैं।
He sings of the joy of Sheila.
और उन्होंने जो शील का जो आनंद था उसका पूरा अनुभव किया।
He speaks of the joy of Maitri.
और उन्होंने जो मैत्री का जो आनंद था वह उसके बारे में उन्होंने बात की।
The sweetness of compassion.
जो करुणा की जो मिठास है उस मिठास को उन्होंने अभिव्यक्त किया।
And he sings of the joy, the happiness, the bliss of realization, transcendental realization.
और जो ऐसा कह सकते हैं लोकोत्तर जो उनकी जो अभिव्यक्ति थी या उनका जो जानना था उसको वो अभिव्यक्त कर रहे थे।
So again, he's establishing the new order.
तो फिर से एक नए संरचना की बात वो कर रहे थे।
The new moral order is based on moral principles.
जो नए नैतिक व्यवस्था जो थी, नई व्यवस्था जो थी, वो नैतिकता के ऊपर आधारित थी।
It's not based on superstition. It's not based on sacrifice. It's not based on ritual.
यह किसी भी रूढ़िवाद के ऊपर या किसी परंपराओं के ऊपर या अंधश्रद्धा के ऊपर यह आधारित नहीं थी।
It's based on real moral and spiritual development and realization.
इसकी जो नींव थी वह पूर्णतः नैतिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर आधारित थी।
So then after a week there, the Buddha walks back towards where the temple is now.
तो उसके पश्चात बुद्ध फिर से थोड़े पीछे चले आए जहाँ पे अभी मंदिर है।
And he sits down under the Rajayatana tree.
और उसके पश्चात वह जो राजयत्न जो वृक्ष था उसके नीचे बैठे।
It's just to the between the Muchalinda tree and the Bodhi tree.
यह इसके बीच है जो मुचलिंद जो वृक्ष था जहाँ पे जो झील है और मंदिर है उसके बीच।
It's a lovely image, isn't it? The Buddha just going from tree to tree, just sitting.
अब यह कितना सुंदर प्रतीक है या प्रतिमा है कि बुद्ध बस यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वृक्ष के नीचे बैठ रहे हैं।
I wish I could have seen him.
मेरी इच्छा है कि शायद मैं उनको तब वहाँ देखता।
What a wonderful delight that would be.
अब कितना सुंदर वो आनंद होता या सुख होता।
Just seeing a very, very concentrated, calm figure.
सबसे गहरी और शांत ऐसी कोई प्रतिमा को देखना।
And such a beautiful figure, just glowing with his realization.
और इतनी सुंदर प्रतिमा जो बस अपने ज्ञान के साथ चमक रही हो, तेजस्वी हो रही हो।
And you just see him sitting down under one tree, then another tree, then another tree.
और हम फिर उन्हें देख रहे हैं कि बस एक वृक्ष से उठकर वह दूसरे वृक्ष में बैठ रहे, तीसरे वृक्ष में बैठ रहे।
From the outside, all you can see is that he's sitting there.
और बाहर से हम बस देख रहे हैं कि बस वो वहाँ केवल बैठे हैं।
He sits under this tree, then that tree.
अब इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं।
From the outside, nothing's happening.
अब बाह्य स्वरूप से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा था।
Just a man sitting under trees.
केवल व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था।
But inside, the world is changing.
लेकिन आंतरिक रूप से सारी दुनिया मानो बदल रही है।
Something new is coming into the world.
कोई तो भी नई बात दुनिया में प्रवेश करने जा रही है।
Something the world has never known before.
ऐसी कोई बात जिसको जिसके बारे में दुनिया को ज्ञात ही नहीं था।
Just all taking place within this one man.
केवल एक पुरुष के अंदर ऐसी सारी दुनिया निर्माण हो रही थी।
So the Buddha sits down under the Rajayatana tree.
तो ये राजयत्न जो वृक्ष था उसके नीचे बुद्ध बैठे।
And again he starts to meditate.
और फिर से उन्होंने ध्यान करना शुरू किया।
And at that point something rather interesting happens.
और उसी क्षण पे कोई तो भी रुचकर ऐसी बात हुई।
According to all the Buddhist traditions, two merchants came by.
सभी बौद्ध परंपराओं के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि दो व्यापारी वहाँ पे आए।
They were on the road from somewhere in the north to Orissa.
वो अपने रास्ते से जा रहे थे उत्तर दिशा से ओडिशा की तरफ।
Their own town was at a place called Ukkala in Orissa.
उनका जो स्थान था जो आज आधुनिक ओडिशा में है उसे कहते हैं उक्कला।
And they were on the road. I don't know whether it was the road that we have here coming from Gaya.
अब हमें पता नहीं है कि वास्तविक वो रास्ता क्या था, शायद जो हम गया से आते वो होगा।
So in the midst of the forest there were these roads going through.
तो जंगल के बीच से ऐसा जो रास्ता गुजर रहा था।
But the road was some distance from the Rajayatana tree.
लेकिन वह जो रास्ता था वह राजयत्न वृक्ष के पास से गुजर रहा था.
And they were on that road.
तो वो उस रास्ते से गुजर रहे थे.
And for various reasons they came off the road.
और कुछ कारणों से वह रास्ते से थोड़ा हटकर चले गए.
Later stories say that their carts got stuck.
कुछ कहानियां ऐसे बताती है कि उनकी जो गाड़ी थी वो अटक गई थी.
And they noticed something strange in the distance.
और उन्होंने ऐसे पाया कि कुछ ही अंतर पे कोई तो भी विशेष बात हो रही है.
Perhaps you could say they felt some atmosphere.
शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई वातावरण को आंतरिक रूप से महसूस किया.
And they were rather nervous.
और उसके बारे में वो थोड़े संभ्रमित थे या नाराज थे.
You know, at that time, as still today, people were quite afraid of भूत.
अब ऐसा हम कह सकते हैं कि लोग अक्सर भूत प्रेत से डर जाते हैं.
And they thought maybe some भूत is there in the forest.
और उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद जंगल में कोई भूत बैठा है.
Maybe that भूत has got our cart stuck.
और हो सकता है कि उस भूत ने हमारी गाड़ी जो है वो रोक दी हो.
So rather bravely they went to investigate.
तो वह पूरे इसके साथ खूबी के साथ अंदर गए जंगल में.
And so when they came through the jungle they saw a man sitting under a tree.
और उस साथ से जब वो जंगल में गए तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है.
And the Buddha must have been both a very strange sight and a very impressive sight.
लेकिन बुद्ध जो थे उनके लिए काफी विचित्र बैठे हुए थे और
impressive.
और बहुत ही प्रभावी रूप से उन्हें लगा.
Because of course he'd not eaten for 6 weeks now.
क्योंकि निश्चित रूप से 6 हफ्ते तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था.
So he must have been very, very thin.
तो निश्चित रूप से वह काफी पतले हो गए होंगे.
And you know, he was probably quite dirty.
और वो मैले भी हो गए.
All the dust would have been on him.
सारी धूल उनके ऊपर बैठ गई होगी.
His cloth would have been just rags.
और उनके जो चीवर थे या उनके जो कपड़े थे ये पूरी तरह मैले या खराब हो गए होंगे.
Presumably he hadn't had time to shave.
उनको शायद दाढ़ी करने के लिए भी समय नहीं रहा होगा.
There were no mirrors in those trees.
वो पेड़ों पे तो आईने लगे नहीं थे.
So he'd have had a beard and longish hair.
और उनकी लंबी दाढ़ी थी और बाल बड़े हुए थे.
And yes, he must have been quite a strange sight.
तो निश्चित रूप से काफी विचित्र उन्हें वह प्रतीत हुए होंगे.
And they weren't quite sure. Maybe it was a boot.
तो शायद उनका लगना यह सवाल है कि क्या यह भूत है क्या.
So you can imagine them coming very, very carefully towards him.
तो वो आप उनकी कल्पना कर सकते हैं कि कितने सावधानी से वो धीरे धीरे थपक के उनके पास आ रहे थे.
But at the same time, they found themselves really strongly drawn to him.
लेकिन यह भी उन्होंने अनुभव किया कि उनके तरफ मानो वो खींचे चले आ रहे हैं.
Because the Buddha was deeply concentrated.
क्योंकि बुद्ध पूरी तरह गहरे एकाग्रता में थे.
And you could see on his face a complete relaxation, complete ease.
और उनके चेहरे पे पूर्ण स्वस्थता थी और पूरे वे सहज थे.
It was obvious that this man had found the deepest possible happiness.
निश्चित रूप से यह होगा क्योंकि यह संभवतः जितनी भी गहराई है उसको उन्होंने हासिल की थी.
And it seemed as if his body was just glowing.
और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका शरीर मानो तेजस्वी हो रहा है.
So the two merchants came up to him.
तो यह जो दो व्यापारी थे वो उनके पास आए.
Their names were Tapasu and Bhaluka.
और उनका जो नाम था वह तपस्सु था और भालुका था.
And they came up to the Buddha and they saluted him.
वो बुद्ध के पास आए और उन्होंने उनको प्रणाम किया.
And they asked him who he was.
और उन्होंने उनको पूछा कि आप कौन थे.
And well, he said, I'm a Shramana.
तो उन्होंने कहा कि मैं श्रमण हूँ.
And with this one, they were reassured he was not a boot, but a human being.
और उन्होंने इस बात का विश्वास उनको पहले ही संपादित कर दिया कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ.
And you can imagine that the Buddha was sitting meditating.
और आप कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध ऐसे बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं.
And they spoke to him.
और उन्होंने उनके साथ बात की.
And the Buddha looked up and looked at them.
और बुद्ध ने अपनी आंख खोली और उनको देखा.
And it would be like being looked at by the sky.
और उन्होंने मानो उनको ऐसे देखा कि आसमान की ओर देख रहे हो.
It would be like being looked at from the depths of the ocean.
उन्होंने ऐसे उनको देखा कि शायद समंदर की गहराई से कोई देख रहा है।
They would see in the Buddha's eyes the depth of his realization.
वो लोग बुद्ध की आंखों में देख पा रहे थे कि उनकी जो प्रज्ञा की जो गहराई है उसको वह देख पा रहे थे।
They would feel the strength of his compassion.
उनके करुणा का जो बल था वह उसको वह देख पा रहे थे।
And they were deeply, deeply moved.
और गहरे गहरे तरीके से वह पूरे प्रेरित हो गए।
And they went for refuge to him.
और पूरी तरह उन्होंने वह बुद्ध को शरण गए।
At this point, of course, well, in a way, there was no Dhamma.
अब इस क्षण तक धम्म नहीं था।
The Buddha hadn't begun to communicate.
बुद्ध ने अभी तक इसकी संवाद करने की शुरुआत नहीं की।
Yes, he'd communicated with Huhunka.
निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बातें Huhunka से कही थी।
But in a way, you could say that he didn't teach him because he wasn't open to being taught.
वैसे देखा जाए तो बुद्ध ने उसको कुछ भी नहीं सिखाया था क्योंकि इसके लिए वह खुला ही नहीं था।
But yes, he hadn't yet formulated a dhamma.
लेकिन अभी तक उन्होंने अपने धम्म को संरचनात्मक ढंग से नहीं किया था।
And there was no sangha.
और तब संघ भी नहीं था।
But nonetheless, they went for refuge to him.
उसके बावजूद भी वह बुद्ध को शरण गए।
They felt that this man was the only security that they could ever find.
और तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि केवल यही व्यक्ति हमारे लिए संपूर्ण सुरक्षितता है।
When they saw him, they just wanted to worship him and to follow him.
जब उन्होंने उनको देखा, तब उनको ऐसे लगा कि हमने इनका अनुसरण करना चाहिए, हमने इनकी वंदना करनी चाहिए।
That's the significance, of course, of going for refuge to the Buddha.
यही महत्व है बुद्ध को शरण जाने का।
This most important act of the Buddhist life.
यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम है बौद्ध जीवन का।
When you go for refuge, you are recognizing that what you go for refuge to is the only source of security.
जब हम ऐसे शरण स्थान को जाते हैं, तब इस बात को हम महसूस करते हैं कि यही हमारी संपूर्ण सुरक्षितता है।
It's only the Buddha who can keep you safe or can bring you to perfect safety.
बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति है जो हमें पूर्णतः सुरक्षित रख पाते हैं या पूर्ण सुरक्षित होने की जगह हमें वो पहुंचाते हैं।
It's only by relying on the Buddha that you can find true happiness.
बुद्ध के ऊपर निर्भर होकर ही हमें संपूर्ण आनंद या सुख मिल सकता है।
So it's a very, very important event.
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना थी।
Tapasu and Bhaluka are the two first disciples.
तो तपस्सु और भालुका यह बुद्ध के प्रथम शिष्य थे।
And they went for refuge to him.
और वह बुद्ध को शरण गए।
And they led the way for the rest of us.
और सभी लोगों के लिए उन्होंने रास्ता खुला कर दिया।
They had deep faith in him.
गहरा विश्वास या श्रद्धा बुद्ध पे उनकी थी।
They realized that what he'd achieved was the only basis for security in the world.
उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो कुछ भी उन्होंने पाया, यही संपूर्ण सुरक्षितता है सारे विश्व में।
It is as if they were saying, "We want that too."
और मानो ऐसी उनकी इच्छाएं प्रतीत हो रही थी कि हमें भी यही प्राप्त करना है।
Not just we want that too, we will get that too.
केवल हम इसे चाहते ही नहीं है, तो हम इसे हासिल भी करेंगे।
Going for refuge to the Buddha means seeing the Buddha as the highest value in the universe.
बुद्ध को शरण जाने का अर्थ यही है कि पूरे संसार में हम उसको उनको उच्चतम मूल्य मानते हैं।
It means wanting that for yourself.
इसका अर्थ यह भी होता है कि हम अपने लिए भी वही चाहते हैं।
Wanting it for the whole universe, you could say.
और सभी विश्व के लिए हम ऐसा चाहते हैं।
But not just that, it means committing yourself to realizing it.
इसका अर्थ केवल शरण गमन ही नहीं है, लेकिन अपने आप को कटिबद्ध करना भी है।
And you can't just go for refuge once.
और हम केवल एक ही बार शरण नहीं जाते।
You need to go for refuge again and again and again.
हमें बार-बार शरण गमन करना होता है।
You need to go for refuge again and again on deeper and deeper levels.
शरण गमन हमें बार-बार करना होता है, जितना गहरा हो सके उतने गहरे स्तरों के ऊपर।
You could say that your whole spiritual life consists in going for refuge to the Buddha and the Dhamma and Sangha.
हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा समूचा जीवन हमारे शरण गमन के ऊपर आधारित है बुद्ध धम्म और संघ को.
Here we are listening to the Dhamma.
अब हम यहाँ सब लोग हैं धम्म को श्रवण कर रहे हैं.
If we're really listening to the Dhamma, we're going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
अगर आप सही मायने में धम्म को सुन रहे हैं, तो आप धम्म को शरण गमन कर रहे हैं.
When you're meditating, if you're really meditating, you're going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
अगर आप सही ध्यान कर रहे हैं, तो आप बुद्ध धम्म संघ को शरण गमन कर रहे हैं.
When you're talking to a friend, really communicating with a friend, you're going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
अगर आप अपने मित्र के साथ अच्छी बात कर रहे हैं और सही में बात कर रहे हैं, तो आप बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं.
Of course, when you're reciting vandana, you're going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
जब आप वंदना करते हैं, तब आप बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं.
Everything that we do, every practice that we undertake, if we do it seriously, is going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
हर आचरण जो हम करते हैं, हमारा हर आचरण बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण गमन करता है.
It's interesting. The expression is going for refuge.
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है समझना कि शरण गमन, शरण जाना होता है.
हाँ, जाना होता है. It's not something you do once.
यह ऐसी बात नहीं है कि केवल हम एक ही बार करते हैं.
You sometimes hear people say, "Oh, I went for refuge with such and such a teacher."
हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि मैंने शरण गमन किया ऐसे-ऐसे गुरु के साथ.
But that's not really a proper way of speaking.
लेकिन वह सही अभिव्यक्ति नहीं है हमारे कहने की.
Because it suggests that you've just done it and that's it.
और ऐसा यह प्रतीत होता है कि बस आपने एक बार किया और बस हो गया.
It's as if with that teacher you started going for refuge. And then you have to continue until you get to enlightenment.
इसका अर्थ यही होता है कि हो सकता है कि इस गुरु के साथ आपने इसकी शुरुआत की हो, लेकिन आपके स्वयं के जीवन में आपको बार-बार शरण गमन जाना होता है जब तक आप संबोधि की प्राप्ति ना कर ले.
So what we are doing, Tapasu and Bhaluka did for the first time there under the Rajayatana tree.
तो जो हम कर रहे हैं वही जो तपस्सु और भालुका ने जो किया हम वही कर रहे हैं बार बार शरण गमन जा रहे हैं.
So they are our leaders, they led the way.
तो वह पुढ़ारी है या नेता है, उन्होंने यह रास्ता इजाद किया.
For them, just the sight of the Buddha was enough.
केवल उनके लिए बुद्ध को देखना ही पर्याप्त था.
So that enabled them or inspired them to go for refuge.
उनकी जो कृति थी यह पर्याप्त थी उनको शरण गमन जाने के लिए.
What fortunate men they were.
कितने सौभाग्यशाली वे पुरुष थे.
And how fortunate it was that they came that way and came to find the Buddha.
और कितने वो सौभाग्यशाली थे कि उस रास्ते से वो गुजर गए और फिर उन्होंने बुद्ध को पाया.
And it said that yes, they went on to Orissa.
और ऐसा कहा जाता है कि उसके पश्चात वो ओडिशा चले गए.
And they developed the Buddha's sangha there.
और वहाँ पे उन्होंने बुद्ध के संघ की स्थापना की या उसको विकास किया.
And it said that Orissa was one of the strongest places for the Dhamma.
और ऐसा कहा जाता है कि ओडिशा जो है यह धम्म के लिए काफी प्रबल जगह है.
In fact, it's quite strange. It's one of the only places in the main part of India where people have continued to call themselves Buddhists until the present time.
वास्तविक रूप से ऐसा हम कह सकते हैं कि आज के आधुनिक जगत तक बुद्ध के समय से लेकर लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं वहाँ पे.
There are 20 villages in Orissa where people consider themselves to be Buddhists.
20 ऐसे गांव हैं आज भी ओडिशा में जो अपने आप को बौद्ध कहलाते हैं.
And they've come from the time of Tapasu and Bhaluka.
और वह तपस्सु और भालुका के समय से चलते आ रहे हैं.
Unfortunately, they've forgotten who the Buddha really is.
अब यह दुर्दैव की बात है कि वो भूल गए हैं कि बुद्ध कौन है.
They think the Buddha is Vishnu.
अब वो ऐसा सोचते हैं कि बुद्ध विष्णु है.
But anyway, they're learning who the Buddha really is.
लेकिन यह सही है कि अभी वो सीख रहे हैं कि बुद्ध कौन थे.
Anyway, so back under the Rajayatana tree.
तो आइए फिर से हम राजयत्न वृक्ष के नीचे आते हैं.
There are Tapasu and Bhaluka.
वहाँ पे तपस्सु और भालुका थे.
And they're worshipping the Buddha.
और वे बुद्ध की वंदना कर रहे थे.
They're committing themselves to the Buddha.
वह बुद्ध को शरण गमन कर रहे थे.
Their intense faith in the Buddha leads them to commit themselves.
उनकी जो गहरी शरण थी जो बुद्ध के लिए वह उनके लिए कटिबद्ध हो रही थी.
So after they've worshipped the Buddha, they think they must offer him something.
तो बुद्ध को वंदन करने के पश्चात उनको कोई तो भी चीज बुद्ध को अर्पण करनी थी.
And they want to offer him some food.
और उन्होंने बुद्ध को कुछ भोजन अर्पण किया.
Obviously they realize that he's not eaten for a long time.
वह यह मान रहे थे कि अब वहाँ वो ज़्यादा समय रुक नहीं पाएंगे.
And they're carrying with them some flour.
और अपने साथ कुछ फूल वो ले जा रहे हैं.
No, आटा.
Flour.
आटा. Flour.
आटा.
आटा.
जो था उनके साथ वो आटा जिसे हम पीट कहते हैं मराठी में वो ले जा रहे थे.
And they've just found some honeycomb.
और उनके पास कुछ शहद था.
And they mix up the flour and with the honey and they gave it to the Buddha.
तो कुछ तो भी उन्होंने शहद के साथ वह आटा मिलाया और बुद्ध को दिया.
And that's his first meal for 7 weeks.
तो 7 सप्ताह के पश्चात उनका वह पहला भोजन था.
And you can imagine how happy these two merchants were as they went on their way towards Orissa.
और आप यह इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब वो ओडिशा जा रहे थे तो यह कार्य करके कितने वह खुश हुए होंगे.
And it's as if these two merchants, they sort of awaken in the Buddha, were the next step in his realization.
तो जैसे वो बुद्ध के बारे में जागरूक हो रहे थे वैसे ही अपने दूसरे कदम को भी वह बढ़ा रहे थे.
It's as if now people are coming into his mind.
अब बुद्ध की यह दूसरी प्रतिक्रिया थी कि लोग उनके मन में अभी आना शुरू हो गए.
He's fully absorbed his experience for himself.
अपने आप के लिए उस अनुभव को उन्होंने पूरी तरह आत्मसात कर लिया था.
But now his mind is turning out to the world around him.
अब धीरे धीरे उनका जो मन है वह अब संसार के तरफ रुख ले रहा था.
So these two merchants, they represent the looking out of the Buddha to humanity.
तो यह दो व्यापारी इसके प्रतिनिधित्व करते हैं कि अभी इंसानियत के तरफ वह अभी रुख ले रहे थे.
And the Buddha begins to think, if you can call it thinking, he begins to reflect on, how to communicate.
अब बुद्ध इसके बारे में सोच रहे थे या ऐसा आप कह सकते हैं कि वह चिंतन कर रहे थे कि अभी मैं संसार के साथ कैसे सुसंवादित हूँ.
When he thinks of other beings, he feels, they need what I've discovered.
तो तब उनको गहराई से यह महसूस हो रहा था कि उनको जानने की आवश्यकता है जो कुछ भी मैंने खोजा.
As a result of what I've discovered, I'm completely free.
अब जो कुछ भी मैंने पाया उसका फल स्वरूप तो यह है मैं तो पूरी तरह विमुक्त हूँ.
I'm just experiencing bliss.
मैं केवल अभी उस आभा का या उस आनंद में है आनंद का अनुभव कर रहा हूँ.
All the things that trouble people, they'll never trouble me again.
जो भी चीजें इस संसार को या दुनिया को विचलित करती है तकलीफ देती है उससे मैं पूरी तरह मुक्त हूँ.
He feels, I really want other people to enjoy this too.
अब मैं यह चाहता हूँ कि और भी लोग इसका आनंद उठाएं.
So the Buddha's compassion reaches out into the world.
तो बुद्ध की जो करुणा थी वह अभी संसार तक पहुँचने वाली थी.
This is the natural unfolding of his realization.
यह स्वाभाविकतः उनके ज्ञान का या जानने का अभिव्यक्ति थी.
He's achieved everything he needs for himself.
उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था जो उनको चाहिए था.
But as soon as he becomes aware of other people, he knows he wants them too to realize what he's realized.
लेकिन जैसे जैसे उन्होंने लोगों के बारे में चिंतन किया उनको लगा कि मैंने यह लोगों को सुसंवादित करना चाहिए जो कुछ भी मैंने हासिल किया है पाया.
He wants them to have this peace, this deep, unshakable peace.
यह औरों के लिए वैसी ही अविचलित शांति चाहते थे.
So he begins to think, well, what to say?
अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या कहूँ या क्या कहा जाए.
At this point, it's still mainly an experience rather than a thought.
इस क्षण तक या इस घड़ी तक भी अनुभव ही हावी था शब्दों की तुलना में.
I don't know whether you've ever experienced anything like this on your own level.
अब मुझे पता नहीं कि शायद आपने अपने स्तर पे इसका अनुभव किया है या नहीं किया है.
Sometimes if you have a very very deep meditation, you can find speaking really quite difficult.
और ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम गहरे अनुभव को हासिल करते हैं तो उसको संवादित करना कठिन होता है.
You know, you open your eyes.
जैसे मान लीजिए हम अपनी आंखें खोलते हैं.
And somebody says good morning to you.
और कोई अचानक आपको कहता है कि good morning.
And it's very strange, you just don't know what to say.
और तब आप विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि अब मैं इसको क्या कहूँ।
In a way, the words themselves they don't really make sense.
क्योंकि जो शब्द है उसमें कुछ वास्तविक अर्थ नहीं रखते हैं।
Good morning.
Good morning.
What does it mean?
ये सुप्रभात का अर्थ क्या है?
That's what you sometimes feel.
ऐसा ही हम महसूस करते हैं।
It's just sounds.
यह केवल एक आवाज होती है।
And yes, you don't know how to respond.
और फिर आपको पता नहीं चलता है कि अब मैं इसको कैसा प्रतिसाद करूं।
It's as if you're experiencing something on a quite different level.
क्योंकि आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे थे कुछ अलग स्तर पर।
It's as if you're on the moon and they're on the ground.
ऐसा होता है कि हम चांद पे होते हैं और वो लोग जमीन पे होते हैं।
You don't know how to communicate.
आपको यह समझ में नहीं आता कि इनके साथ कैसे संवाद प्रस्तावित करें।
So on another level altogether, this is perhaps something of what the Buddha was experiencing.
तो दूसरे स्तर पर शायद ऐसा ही कुछ हो रहा था जो बुद्ध स्वयं अनुभव कर रहे थे।
He just didn't know how to communicate it.
उनको शायद यह पता नहीं था कि कैसे हम इसको अभिव्यक्त करें।
And he thought, well, if I do tell people what I've realized, they won't know what I'm talking about.
और उनको यह लगा कि शायद अगर मैं लोगों को यह बताऊं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं।
Well, for instance, we've said so many times during these days, everything arises in dependence on conditions.
इस शिविर के दौरान हमने कई बार ऐसे कहा है कि चीजें उत्पन्न होती है कुछ परिस्थितियों के आधार पर।
Well, we know what the individual words mean.
अब हमें पता है कि हर एक शब्द का अर्थ क्या है।
We know what the combination signifies.
हमें पता है कि यह जो शब्दों की संरचना है इसका अर्थ क्या है।
But we don't get the realization that it's communicating.
लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि इसको जान लेना क्या है और इसको अभिव्यक्त करना क्या है।
So the Buddha felt, well, if I communicate, nobody will understand.
और बुद्ध को यह लगा कि अगर मैं यह लोगों को बताऊंगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा।
And well, he just didn't know what to do.
और उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए।
Now of course we're using, you know, a way of talking about the Buddha's experience, which is more to do with our experience than his.
तो निश्चित रूप से हम वही अनुभव अभी अभिव्यक्त कर रहे हैं जो हमारे स्तर पर है, लेकिन बुद्ध की अभिव्यक्ति अपने अनुभव के स्तर पे भिन्न होगी।
But the process taking place within him would have been of a quite different order.
लेकिन उनके अपने अंदर जो यह संभावनाएं या प्रतिक्रिया हो रही थी वह दूसरे तरीके से थी।
But yes, something like this process went on in him.
लेकिन शायद ऐसी ही कुछ प्रक्रिया उनके अंदर हो रही होगी।
And then we're told he had a sort of vision. We are told he had a sort of vision.
और हमें यह ज्ञात है कि उनको कोई दृष्टि की प्राप्ति हुई।
He saw a lotus pond.
और उन्होंने देखा एक कमल कुंज।
Maybe he remembered what he'd seen from the Muchalinda tree.
शायद उन्होंने देखा हो जो हम मुचलिंद के पास जो झील देखते हैं।
And he saw that lotuses were growing in that pond.
और उन्होंने देखा कि उस कमल कुंज में कुछ कमल खिल रहे थे।
And he saw that those lotuses were in different stages of growth and unfoldment.
तो यह जो कमल थे यह अपने विकास के अलग अलग स्तर पर खुले हुए थे।
Some of those lotuses were deep, deep in the mud.
कुछ जो कमल थे वह कीचड़ में काफी गहरे घुसे हुए थे।
Some of them were growing up through the water.
और कुछ जो कमल थे वह पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे।
Some of them had pushed above the water.
कुछ जो कमल थे वह पानी के ऊपर आ गए थे।
And some had just begun to open in the sunlight.
और कुछ कमल जो थे वह सूर्य प्रकाश में पूरी तरह खिल रहे थे।
So that these lotuses were in different stages of growth.
और यह जो कमल थे वह अपने विकास के अलग अलग स्तर पर थे।
And so the Buddha realized, well, human beings are like that too.
तब बुद्ध ने यह जाना कि सभी इंसान भी ऐसे ही हैं।
We are growing.
हम लोग विकास कर रहे हैं।
We're not growing like lotuses, of course.
अब निश्चित रूप से हम कमल के तरह नहीं विकास करते हैं।
We're not going to grow new arms or legs or heads.
हम अपने हाथ पैर और सर से विकसित होते हैं।
The growth is not a growth of our bodies once we've matured.
लेकिन विकास जो है यह परिपक्व शरीर का ही नहीं है।
It's a growth of our minds, a growth of our hearts.
यह हमारे मन का भी विकास है।
and our minds, our hearts are in different stages of unfoldment.
और हमारा मन जो है यह विभिन्न विभिन्न स्तर पे खुल रहा है.
So the Buddha thought, well, some people are just a little bit open.
तो बुद्ध ने यह सोचा कि कुछ लोग जो है यह कुछ हद तक खुले हुए हैं.
If I find them, I will be able to communicate.
अगर मैं उन लोगों को पा लेता हूँ तो शायद उनको मैं कुछ बातें बता पाऊंगा.
So he realized that there was the possibility of communication.
तो बुद्ध ने यह जाना कि वहाँ पे संभावनाएं हैं मेरी बातें सुसंवादित करने की.
But now this isn't said in the tradition, but you could go further.
अब यह परंपराओं में कहा गया है लेकिन इसके आगे भी कुछ बातें हैं.
You could say that if you can communicate with some who are a little bit open, they will be able to communicate with the people who are still bugs.
उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं यह बातें जो लोग थोड़े से खुले हुए हैं उनके साथ करूं तो शायद जो लोग बंद हैं उनके साथ वह यह बात बता पाए.
They will be able to communicate in their turn with those who are still in the water.
वह लोग जो है उन लोगों को यह बता पाएंगे जो लोग बंद हैं उनके अपने स्तर पर.
And they will be able to communicate in their turn with those who are still in the mud.
और फिर जो बंद लोग हैं वो शायद अपने स्तर से लेकर निचले स्तर के लोगों को कुछ बातें बता पाएंगे जो अभी तक कीचड़ में हैं.
So every human being needs the Dhamma in the way that is appropriate to their stage of development.
तो हर व्यक्ति को धम्म की आवश्यकता है अपने अपने स्तर पर जो लोग खुले हैं.
But the Buddha saw that some people could hear the full truth that he'd realized.
लेकिन बुद्ध ने यह जाना कि कुछ लोग शायद यह समझ पाएंगे कि जो सत्य को मैंने पूरी तरह जाना है.
And when he realized that, he thought, well, I need to find such people.
और जब बुद्ध ने यह जाना तब उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों को अभी मैंने ढूंढना चाहिए.
And well, he began to think, who could he communicate with?
और फिर बुद्ध ने सोचा कि किसके साथ मैं यह बात कर सकता हूँ.
And first of all, he thought of his old meditation teachers.
और सबसे पहले उन्होंने उनके बारे में सोचा जो उनके प्रथम ध्यान के गुरु थे.
And Alara Kalama and Udaka Ramaputra.
Alara Kalama और Udaka Ramaputra.
And he thought, well, they were wonderful teachers.
और उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छे गुरु हैं.
They took me so far.
क्योंकि उन्होंने मुझे काफी हद तक ऊंचाई पे या उच्च स्तर पर ले गए.
They would be really able to hear what I've got to say.
शायद वो मुझे सुन पाएंगे जो चीज को मैंने प्राप्त किया है.
But then he realized that they were dead.
लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई थी.
He realized that they weren't there for him to teach.
और उन्होंने ऐसा पता लगा कि वो अभी जीवित नहीं है उनकी शिक्षाओं के लिए.
Then he remembered the the five disciples who had been with him when he was practicing tapasya.
तो जब वो तपस्या का आचरण कर रहे थे या जब वो तपस्या कर रहे थे तब उन पांच अपने मित्रों को उन्होंने याद किया.
And he realized they were at Saranath.
और उन्होंने यह पता लगाया कि वे लोग सारनाथ में हैं.
So up he got and off he went to find them.
और वैसे वो वहां से उठे और उनके तरफ चल पड़े.
What happened next? We have to see at a Dhammakranti retreat in Saranath.
अब इसके पश्चात क्या हुआ हम इसकी बात करेंगे धम्मक्रांति महाशिविर जब सारनाथ में होगा तब.
Sadhnaratna, Ratayus, Nagaketu. Okay. Yes, there they are at the back there. So right now we're just going to get up. We're going to walk to Saranath.
तो अब हम क्या करेंगे? सब लोग उठेंगे और सारनाथ की तरफ चल पड़ेंगे.
And we'll take this pandal with us.
और यह जो पंडाल है यह हम साथ में ले जाएंगे.
And then we'll carry on our महाशिविर.
और हमारा जो महाशिविर है उसको हम बस जारी रखेंगे.
ठीक है? But yes, as they say, what happened next is another story.
तो ऐसा कहते हैं कि जो भी अब उसके पश्चात हुआ अब ये एक अलग कहानी है.
The Buddha is on his way out of Buddha Gaya towards Kashi, towards Varanasi, towards Saranath.
तो बुद्ध वहां से उठे और काशी वाराणसी और सारनाथ की तरफ चल पड़े.
And we've completed his 7 weeks here in this place.
तो इस स्थल पर इस स्थान पर उन्होंने अपने 7 सप्ताह पूरे किए थे.
And today we've learned two very, very important things.
और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखे.
We've learned about going for refuge to the Buddha.
हम सीखे कि हम बुद्ध को कैसे शरण जाना चाहिए.
Well, we know about it already, of course, but we've seen where it comes from, where it started.
निश्चित रूप से हम इसे पहले भी जानते थे, लेकिन हमने यह देखा कि इसकी सही शुरुआत कहाँ से होती है.
It starts with that heartfelt response to the Buddha.
यह आपके मन की सही श्रद्धा से इसकी शुरुआत होती है.
Or to the Dhamma, or to the Sangha.
धम्म के साथ भी यही है, संघ के साथ भी यही है.
It's a matter of the heart.
यह आपके मन की बात है.
You can't think it.
आप इसको सोच नहीं सकते.
It's just a direct response to the Buddha.
यह आपका प्रत्यक्ष प्रतिसाद है बुद्ध के लिए.
It's a direct response to the Dhamma.
यह आपका प्रत्यक्ष प्रतिसाद है धम्म के लिए.
And you feel, yes, this is the highest that the universe has to offer.
और तब आप यह महसूस करते हैं कि विश्व में सबसे उच्चतम प्रदान करने वाली चीज यही है.
This is what gives the universe meaning.
यही तो है जो विश्व को एक अर्थ देती है, मायना देती है.
This is the goal and aim of my life.
यही मेरे जीवन का अंतिमतः लक्ष्य है, उद्देश्य है.
And you feel, yes, I must achieve this too.
और हम में यह गहराई से प्रतीत होता है कि मैंने भी इसको हासिल करना चाहिए.
And a very deep sense of conviction comes in you.
और बहुत ही गहरी कटिबद्धता हमारे मन में आती है.
And you feel, I will give my whole life to realizing what the Buddha has seen.
और हम अपने जीवन में यह गहराई से महसूस करते हैं कि मैं भी वही हासिल करूंगा जो बुद्ध ने हासिल किया.
That is going for refuge to the Buddha.
यही है बुद्ध को शरण गमन करना.
And that's what Tapasu and Bhaluka did here in Bodh Gaya.
और यही तपस और भालुका ने किया बोध गया.
That's what Dr. Babasaheb Ambedkar did in Nagpur in
1956.
And Babasaheb was fully aware of the deep significance of what he was doing.
और बाबा साहब इस चीज के पूरी तरह गहराई से सजग थे कि वो क्या कर रहे हैं.
For him, going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha wasn't just waving a Buddhist flag.
बाबा साहब के लिए बौद्ध धर्म संघ को अपनाना केवल बौद्ध झंडे को हिलाना नहीं था.
You know, people wave the flag, but they don't do anything.
लोग क्या करते हैं, झंडे हिलाते रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ करते नहीं.
But Baba Sahib knew that going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha meant a complete change in one's whole way of life.
बाबा साहब ने इस बात को गहराई से जाना कि बुद्ध धर्म संघ को शरण जाना यानी जीवन में संपूर्णता परिवर्तन.
He embodied this in the 22 pratigyas.
और इसको 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने भले बाकी आंका है, डाला है.
Some people say today, well, the pratigyas, we don't need them anymore.
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं इस 22 प्रतिज्ञाओं की हमें आवश्यकता नहीं है.
But what those pratigyas are about is being a real Buddhist.
लेकिन क्या वो प्रतिज्ञा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चे बौद्ध कैसे बने.
If you do without those, you're saying it's all right just to be a Buddhist but without doing anything.
अगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है बौद्ध होना अच्छा है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है.
But that's not being a Buddhist.
लेकिन यह बौद्ध होने का सही अर्थ नहीं है.
Being a Buddhist is really going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha, deeper and deeper, moment by moment, day by day.
सही बौद्ध होने का वही अर्थ है कि गहराई से हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं प्रतीक्षण.
So that's the first thing we've learned.
तो यही सबसे पहली बात हम सीखते हैं.
Then we've seen today that the enlightenment experience is as much about compassion as it is about wisdom.
तो हमने दूसरी बात यह भी सीखी कि संबोधि का अर्थ जितना प्रज्ञा के साथ गहरा है उतना ही करुणा के साथ भी है.
The Buddha could have just said, मैं ठीक हूँ.
बुद्ध शायद ऐसा कह सकते थे कि मुझे प्राप्त हो गया, मैं ठीक हूँ.
And why should I bother about others?
मैं क्यों औरों के बारे में चिंता करूँ.
I'm happy.
मैं खुश हूँ.
And nothing is bothering me.
कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं करती है.
He could have just stayed sitting under one tree after another for the rest of his life.
सारा जीवन भर चाहे वो एक झाड़ वृक्ष बदल के दूसरे वृक्ष के तले बैठ सकते थे.
But as soon as he came into relationship with other beings, with other human beings, he responded to them.
लेकिन जैसे ही वह अन्य सजीवों के संपर्क में आए, मानवों के संपर्क में आए, उन्होंने अपने बात को सुसंवादित करना शुरू किया.
And part of his experience was a desire to share that experience.
अब उनके इच्छा का यह एक बहुत ही प्रबल हिस्सा था कि अपने अनुभव को वह औरों के साथ बांटना चाहते थे.
There's no such thing as wisdom without compassion.
ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं अगर उसमें करुणा ना हो.
You could also say there's no such thing as real compassion without wisdom.
और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे हम करुणा कहते हैं जिसमें प्रज्ञा ना हो.
They're not really two different things.
यह दोनों भी अलग-अलग बातें नहीं हैं.
That realization is as much a realization of wisdom as a realization of compassion.
यह उतनी ही संबोधि की प्राप्ति का अर्थ है प्रज्ञा और करुणा के साथ एकदम समान रूप से.
You realize your complete connection with all other living creatures.
आप अन्य सजीवों के साथ अपना संपूर्णतः गहरा संबंध प्रस्थापित करते हैं.
So the Buddha devoted the rest of his life to communicating what he'd realized to others.
तो उनका जो बचा हुआ जो जीवन था उसको उन्होंने पूरी तरह कटिबद्ध किया औरों को यह बात बताने के लिए.
And brothers and sisters, he had you and I in mind. You and I in mind.
तो भाई और बहनों उनके मन में यह था आप और मैं.
He didn't know us, of course.
अब यह इस बात को जानते नहीं थे.
But he was thinking of us.
लेकिन वह हमारे बारे में सोच रहे थे.
He knew beings would come on this planet.
वह यह जानते थे कि जो सजीव है इस धरातल पर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं.
And he wanted them to hear the Dhamma.
और यह वो चाहते थे कि वह भी लोग धम्म को सुने.
He wanted them to have the chance to realize what he had realized.
उन्होंने यह भी गहराई से सोचा कि उनको भी यह अवसर मिलना चाहिए जो मैंने पाया है यह जानने के लिए.
That's why we're here.
इसलिए हम सब लोग यहाँ हैं.
It's because of the Buddha's compassion that we are here today.
केवल बुद्ध की करुणा के कारण ही हम सब लोग अभी यहाँ हैं.
And yes, we must pass it on.
और निश्चित रूप से हमने इसे औरों तक ले जाना चाहिए.
Our own spiritual life, our own spiritual practice must have a compassionate dimension.
हमारा जो आध्यात्मिक आचरण है या हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है इसमें करुणा का आयाम होना अति आवश्यक है.
If it doesn't have that other regarding dimension, it's not really a spiritual life.
अगर यह आयाम अपने आध्यात्मिक जीवन में नहीं होता है तो वह सही आध्यात्मिक जीवन नहीं है.
There's no such thing as a selfish dhamma life.
ऐसी कोई भी स्वार्थ रूप से भरी हुई बात धम्म जीवन में नहीं होती.
A dhamma life must be a life of working on yourself and helping others.
Dhamma jivan wahi jivan hai jo hum swayam ke upar karya karte hain aur auron ko madad karte hain.
And especially of helping others to practice and realize the Dhamma.
Hum auron ko isi roop mein madad karte hain ki unko dhamma samjhate hain aur unko acharan karne ke liye madad karte hain.
That's what the Buddha's sitting under the Rajayatana tree signifies for us today.
यही राजयत्न बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का बुद्ध का अर्थ था हम सब के लिए.
We need to go for refuge to the Buddha every moment of our lives.
हमारे जीवन के प्रति क्षण हमने बुद्ध को शरण जाना चाहिए.
And we need to think of others, we need to help others every moment of our lives.
हमारे जीवन के प्रतीक्षण हमने औरों को औरों के बारे में सोचना चाहिए उनको कैसे हम मदद करते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए.
Even when you're doing your own spiritual practice, you need to have others in mind.
भले ही आप अपना आध्यात्मिक जीवन क्यों ना जी रहे हो आचरण क्यों ना कर रहे हो आपको औरों के बारे में सोचना चाहिए.
You know, for instance, you're doing the mindfulness of breathing.
अब मान लीजिए कि आप आनापानसति का ध्यान कर रहे हैं.
Well, you're doing it so that you can realize the truth for yourself.
आप इसलिए यह कर रहे हैं कि आप स्वयं इस सत्य को जानना चाहते हैं.
But you're doing it so that you can help others too.
और आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप औरों को भी चाहते हैं कि यह बात पता चले.
If you do not have this attitude, you will not make spiritual progress.
अगर आप में यह नजरिया नहीं है यह तरीका नहीं है जरिया नहीं है तो आप आध्यात्मिक विकास नहीं करेंगे.
You'll just be looking for a sort of personal heaven.
केवल आप अपने ही स्वयं के
heaven. Yeah.
आप अपने स्वयं के ही स्वर्ग की खोज कर रहे हैं ऐसा इसका अर्थ होगा.
Well, heaven's okay, I suppose.
अब मुझे लगता है स्वर्ग ठीक है.
I've never been there, at least I can't remember ever being there.
मैं वहाँ गया नहीं था मुझे याद भी नहीं है मैं कब वहाँ गया था.
But in Buddhism we say, well, heaven's no use because it's not permanent.
क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग का कुछ ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि वह भी नित्य नहीं है.
You know, you think, oh, everything's wonderful.
क्योंकि आप तक यह सोचते हैं कि वाह सारी चीजें बहुत बढ़िया है.
But then you have to come down.
लेकिन फिर से आपको वास्तविक जीवन में आना होता है।
So Buddhism says there's no point in trying to find just personal happiness।
तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि इस चीज का कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, केवल हम अपने ही सुख के बारे में सोचें।
It says you can find it for a while।
वो कहते हैं कि कुछ हद तक आप इसे पा सकते हैं।
But you'll lose it।
लेकिन आप इसे गवा भी देंगे।
Nothing lasts।
कोई भी चीज नित्य नहीं है।
So the Buddhism says that happiness is to be found in transcending self।
तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि अपने स्वयं को लोकोत्तर ले जाने में ही सुख है।
Then you're just trying to help yourself and help others equally।
तभी आप अपने आप को और औरों को भी समान रूप से मदद कर सकते हैं।
The secret of happiness is Maitri।
क्योंकि आनंद का रहस्य मैत्री में है।
The secret of happiness is Karuna।
और आनंद का रहस्य करुणा में है।
I'm sure that some of you have experienced this even during this retreat।
मुझे आशा है कि इस शिविर के दौरान आप लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा।
And that's what the Buddha's stay under the Rajayatana tree tells us today।
यही आज हमको बता रहा है कि बुद्ध का राजयत्न वृक्ष के नीचे होने का सही अर्थ क्या है।
And Dr. Babasaheb Ambedkar is an outstanding example of these two messages।
और इन दो संदेशों के बाबा साहब जो है एक जीते जागते उदाहरण है।
He devoted his life to the Buddha Dhamma Sangha।
उन्होंने अपना सारा जीवन बुद्ध धर्म संघ को के लिए कटिबद्ध किया।
Very in the last years of his life, he said that he regretted that he had not committed himself to the Buddha Dhamma Sangha earlier।
वह अपने अंतिम जीवन के बारे में यह दुख व्यक्त कर रहे थे, पश्चाताप व्यक्त कर रहे थे कि मैंने बुद्ध धर्म संघ के बारे में पहले से ही काम करना क्यों नहीं शुरू किया।
And he said he would give his last years to the Buddha Dhamma Sangha।
और उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा अब अंतिमतः जो बचा हुआ जीवन है, मैं यह बुद्ध धर्म संघ को ही कटिबद्ध करूंगा।
And he was a man who did what he said he would do।
और वह ऐसे व्यक्तियों में से थे जो वो कहते थे वह करते थे।
So yes, Baba Sahib was an outstanding example of going for refuge to the Buddha Dhamma Sangha।
तो भाई और बहनों, वह बुद्ध धर्म संघ को जीते जागते उदाहरण थे जो शरण गए।
And he was an outstanding example of helping others।
और यह एक अप्रतिम उदाहरण है औरों को मदद करने के लिए।
There's so many stories about his it's just practical, immediate, simple helpfulness।
ऐसे कई उदाहरण उनके जीवन में है जो सीधे और प्रत्यक्ष रूप से औरों को मदद करने के लिए।
His whole life was devoted to helping others।
उनका जो समूचे जीवन था वो औरों की मदद करने में गया।
So we must be inspired by the example of the Buddha and inspired by the example of Baba Sahib।
तो इसलिए हम अपने आप से पूरी तरह प्रेरित होने चाहिए बुद्ध के उदाहरण से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के उदाहरण से।
And this is the final message of the Buddha's 7 weeks in Bodh Gaya।
यही अंतिमतः संदेश है बुद्ध ने जो 7 सप्ताह बोध गया में जो बिताया।
Go for refuge to the Buddha Dhamma Sangha।
बुद्ध धम्म संघ को आप शरण जाइए।
Go for refuge day by day for the rest of your life।
अपने जीवन के बचे हुए दिनों में हर दिन प्रतिदिन इनको शरण जाइए।
And for the rest of your life, live to serve others।
और अभी जो आपका बचा हुआ जीवन है औरों को मदद करने के लिए बिताइए।
Live for Maitri।
मैत्री के लिए जिए।
And especially live to spread, to share the Dhamma with as many people in India as you possibly can।
और विशेषता इस बात के लिए आप लोग जीवन जिए कि बुद्ध धम्म को या धम्म को और लोगों तक हम कैसे प्रसारित कर सकते हैं।
Not just India, but the whole world।
केवल भारत के लिए ही नहीं तो समूचे विश्व के लिए।
नमो बुद्धाय, जय भीम।